नमस्कार दोस्तों, जब चलें शहर की ओर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र तिवारी।
और मैं अंजलि जोशी।
और दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। कोई सुझाव हो तो हमें जरूर भेजिए। हमारा नंबर और पता हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे।
लेकिन अब बात करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत की। तो नरेंद्र, हमारे धारावाहिक शहर की ओर में क्या मीरा ने अपनी बेटी नैना का नाम स्कूल से कटवा दिया?
अंजलि, ये तो सुनकर ही पता चलेगा।
वैसे नरेंद्र, एक सवाल है।
हाँ पूछो।
सवाल ये है कि पढ़ाई क्यों करें, स्कूल क्यों जाएं? अब छुटकी को ही देख लो। जब मधु ने उसे स्कूल जाने को कहा तो उसने कहा कि पढ़ लिख कर कौन सा मुझे कलेक्टर बनना है।
वैसे अंजलि, मेरा मानना है कि अगर आपकी पढ़ाई आपको सक्षम नहीं बनाती ना, तो वो किसी भी काम की नहीं है। शिक्षा पाने का मतलब हर रोज स्कूल जाना या इम्तिहान लिखकर पास होना ही नहीं होता। जरूरी होता है वो सब सीखना जो हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में काम आए।
दोस्तों, नरेंद्र ने अपनी बात तो बता दी, अब देखते हैं कि शहर की ओर में इसी बात को लेकर आगे क्या हो रहा है।
सर, वो पुणे से साड़ियों का माल अभी तक नहीं आया है।
क्या अभी तक नहीं आया? इस वर्मा को फोन लगाओ, मैं देखता हूँ उसे।
जी सर। ये लीजिए सर।
मिस्टर वर्मा, मैं पूछता हूँ पुणे से मुंबई माल की डिलीवरी में कितना समय लगता है? आप कमाल करते हैं मिस्टर वर्मा, जिस तरह की साड़ियों की यहाँ सबसे ज्यादा मांग है उसी को आप नहीं भेजने की बात कर रहे हैं। ये बिजनेस है मिस्टर वर्मा, कोई मजाक नहीं कि आपने कहा कि 4 दिन बाद भेजूंगा और मैं मान लूंगा। मुझे माल की डिलीवरी आज ही चाहिए, तो बस आज ही चाहिए। और अगर आप नहीं भेज सकते तो बता दीजिए, मैं किसी और सप्लायर से बात करता हूँ।
श्वेता।
यस सर।
साड़ियों के काउंटर पर कौन है?
सर, मिस कविता पंत।
ओके। मिस कविता, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ ना?
जी सर।
मिस कविता, आप इस वक्त दुकान में ही है ना?
जी सर।
पर आपका ध्यान अपने काम पर नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ ना मिस कविता?
जी सॉरी सर।
जब आपका ध्यान अपने काम पर ही नहीं है तो आप कस्टमर्स का कितना ध्यान रख पाती होंगी? आपको मालूम है हमारे काम में कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना जरूरी है?
यस सर।
और फिर भी काम के टाइम में आपका ध्यान इधर उधर है?
जी सॉरी सर।
मिस कविता, मैं दोबारा आपको इस तरह लापरवाह ना देखूं। और सुनिए
जी,
पुणे से शाम तक साड़ियों का नया कलेक्शन आने वाला है, अगर नहीं आता है तो इसकी रिपोर्ट तुम मुझे दोगी।
यस सर।
मुझे उम्मीद है अब आपका ध्यान अपने काम पर ही रहेगा।
यस सर।
चलो श्वेता।
कविता, क्या हुआ, तुम इतनी खोई हुई क्यों हो?
नहीं कुछ नहीं, बॉस तो बस बात बात पर बिगड़ जाते हैं।
जब माल नहीं आता तो उन्हें स्टोर में कोई ना कोई तो मिलना चाहिए अपना गुस्सा निकालने के लिए। अरे तुम बॉस की फिक्र मत करो, वो तो सब पर गुस्सा करते हैं। पर कविता, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो।
नहीं राजेश, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस घर की खबर नहीं मिली।
अरे तुमने बताया तो था कि माया गई है गांव और वो तुम्हारे घर भी होकर आएगी, बल्कि तुमने तो कुछ सामान भी भेजा था अपने घर वालों के लिए।
हाँ भेजा तो था, और बस रुक रुक के मन में यही बात आती है कि पिताजी ने कोई बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर दिया हो उस सामान को लेकर।
कविता, तुम बेकार में चिंता कर रही हो, वहाँ सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा। और वैसे भी अभी कुछ दिन में माया आ ही जाएगी, तुम उसी से पूछ लेना कि वहाँ क्या हुआ। और हाँ, अगर बॉस ने ऐसी शक्ल लिए तुम्हें दोबारा देख लिया तो फिर चिल्लाएंगे। चलो अब अपनी शक्ल ठीक करो। अरे ठीक करो
और थोड़ा सा इस चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। अरे लाओ ना जल्दी से।
ये हुई ना बात।
एक्सक्यूज मी।
यस मैम।
जरा सिल्क में कुछ दिखाइए।
अच्छा कविता, तुम काम करो, मैं बाद में बात करता हूँ।
हाँ जरूर। वैसे मैम, आपको किस पर्पस के लिए साड़ी चाहिए?
एक्चुअली किसी के शादी पे जाना है तो कुछ अच्छा सा दिखाइए।
अगर शादी के लिए आपको साड़ी चाहिए तो मैम ये देखिए, ब्राइट कलर और सोबर एम्ब्रॉयडरी के साथ बड़ी खूबसूरत लगेगी।
नहीं, मुझे कुछ ज्यादा कढ़ाई वाला चाहिए।
ठीक है मैम, उसके लिए आप ये वैरायटी देखिए।
दीदी दीदी दीदी, लो आप यहाँ बैठी हो और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। आप रो रही हैं?
अरे नहीं मधु, ये तो बस ऐसे ही।
मुझे मालूम है दीदी, आपके नासों की वजह।
अरे नहीं पगली, ये तो बस ऐसे ही।
एक बात कहूँ दीदी, आप बुरा तो नहीं मानोगी?
अरे मैंने कभी तेरी किसी बात का बुरा माना है भला? बोल क्या बात है?
दीदी ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लो और नैना की स्कूल की फीस भर दो।
मधु ये क्या कर रही है?
मैं ठीक कर रही हूँ दीदी।
लेकिन मधु तेरे पास ये पैसे?
ये उनकी पहली कमाई के पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे।
अरे तो मैं इन्हें कैसे रख सकती हूँ? कितने प्यार से दिया होगा चंदर ने। नहीं, तुम रहने दो।
दीदी, ये पैसे उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए दिए थे ताकि मुझे खुशी मिल सके। और पता है दीदी, मेरी खुशी किसमें है?
किसमें?
कि नैना की पढ़ाई जारी रहे। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होगी।
लेकिन तुझे कैसे पता कि नैना की फीस?
मुझे छुटकी ने सब कुछ बता दिया।
लेकिन फिर भी मधु।
बस दीदी, अब आप और मना मत करो। मैं नहीं चाहती कि पैसों की कमी की वजह से नैना की पढ़ाई रुके। एक लड़की जो पढ़ना चाहती हो, उसकी पढ़ाई को बीच में ही छुड़वा देने का दर्द क्या होता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप ये पैसे रख लीजिए दीदी, आपको मेरी कसम।
मधु, सच कहूँ तो मैं यहाँ अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। तुम्हारे आने से ऐसा लगता है मुझे कोई सहारा मिल गया इस घर में।
दीदी, जब भी आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बता दिया करो, मैं यहीं तो हूँ। अच्छा, अब चलो आंसू पोछ दो।
लो, पोछ लिए।
अरे यार, पासपोर्ट वाले का आज भी कोई फोन नहीं आया। क्या करूं, मैं फोन करूं? रात के 8 बज रहे हैं। हाँ, इस वक्त खाली होगा, अभी फोन कर लेता हूँ।
हाँ भाई, कौन बोल रहा है?
सर, उमेश बोल रहा हूँ।
कौन उमेश?
सर, वो पासपोर्ट पैसे दिए थे।
अरे तो भाई, मैंने बोला ना आपको, बन जाएगा।
अरे सर, मैं जब भी आपको फोन करता हूँ आप हर बार यही कहते हैं, बन जाएगा बन जाएगा। अरे मैं पूछता हूँ कब बनेगा, कितना टाइम तो बीत चुका है।
अरे तो बोल रहा हूँ ना भाई, बन जाएगा। अच्छा, कितना टाइम हो गया तुम्हें कागज दिए हुए?
जी, 2 महीने से ज्यादा हो गया है। और तो और, मैं जब भी आपको फोन करता हूँ या तो आप फोन उठाते नहीं है या फिर फोन काट देते हैं।
अरे भाई, अब हमें और भी तो काम है, या सारा दिन तुम ही लोगों से बातें करते रहेंगे? अरे भैया, एक बार बता दिया ना, अभी टाइम लगेगा तो टाइम लगेगा, फिर क्यों बार बार फोन करते हो यार?
देखो, आपने मुझसे पासपोर्ट की फीस से कहीं ज्यादा पैसे लिए हैं, और अब अगर मेरा पासपोर्ट जल्दी नहीं बना तो मैं देख लूंगा।
क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू?
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दिल्ली आकर तुमको देख लूंगा।
आजा बेटा, आजा। आ दिल्ली आ, मैं तुझसे डरता हूँ क्या? दिल्ली आ, एक बार बताता हूँ मैं तुझे।
लगता है मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, वहीं जाकर पासपोर्ट की सही स्थिति का पता चल पाएगा।
ये ले तेरा दाल, चावल, एक साबुन और माचिस।
कितने हुए?
40।
तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ।
अरे भाई, पैसे तो देता जा।
चंदू, पैसे मैं हफ्ते भर में दे दूंगा यार।
अरे पहले के भी तेरे 20 रुपए बाकी हैं भाई।
सब मिलाकर दे दूंगा।
पर यार, हद हो गई।
चंदर बेटा।
अरे बड़ी, आओ आओ, कैसी हो?
मैं ठीक हूँ बेटा, तू सुना, तेरी माँ कैसी है?
माँ ठीक है बड़ी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती।
हाँ बेटा, अब इस उम्र में किसकी तबीयत ठीक रहती है।
तो बोलो बड़ी, आज क्या दूँ आपको?
बेटा, वो तेल खत्म हो गया है, सोचा तेरे यहाँ से ही ले लूँ।
हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया बड़ी। कितना तेल कर दूँ?
250 ग्राम कर दे बेटा।
वैसे बड़ी, दर्शन की कोई खबर?
हाँ बेटा, 2 हफ्ते पहले फोन आया था उसका, कह रहा था 10-5 दिन में आ जाएगा, पर अभी तक तो कोई खबर नहीं है उसकी।
अरे आ जाएगा बड़ी, आ जाएगा। वैसे उसका काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना मुंबई में?
हाँ, बता तो रहा था कि किसी अच्छे होटल में नौकरी मिल गई है। कहता तो ये भी है कि नए लोग पैसे अच्छा देते हैं।
ये तो बड़ी अच्छी बात है।
काहे की अच्छी बात बेटा, जब तक 4 पैसे घर पर नहीं भेजेगा तो किसे यकीन होगा कि पैसे मिल भी रहे हैं, या पता नहीं वहाँ वैसे ही मुफ्त में काम कर रहा है।
ये लो बड़ी तेल।
बना रहे बेटा, बना रहे, इसके पैसे मैं जल्दी ही दे दूंगी।
लेकिन बड़ी, वो पिछले हफ्ते भी।
हाँ हाँ, याद है, जैसे ही दर्शन आता है उसे दिलवा दूंगी। अच्छा, अब चलती हूँ।
ठीक है बड़ी, प्रणाम।
प्रणाम बेटा।
कमाल है, दर्शन शहर में रहकर भी अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता, और यहाँ बेचारी उधार सामान खरीद रही है। मैं भी आखिर कब तक इन सब लोगों को उधार दूंगा।
तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर। अच्छा अंजलि, मान लो तुम्हारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि या तो तुम आगे पढ़ाई कर सकती हो या फिर अपने लिए सुंदर नए कपड़े खरीद सकती हो, तो क्या तुम अपनी पढ़ाई को महत्व देते हुए अपनी बाकी जरूरतों का त्याग कर सकोगी?
बिल्कुल नरेन, इसमें मुझे कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ऐसा किया भी है।
सचमुच?
जब कॉलेज जाती थी तो मैंने 3 साल तक कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, और पूरी ग्रेजुएशन के दौरान कभी कोई फिजूल खर्ची नहीं की।
वाकई?
सभी दोस्त मस्ती करते थे, मायूसी भी होती थी, पर मुझे मेरा लक्ष्य मालूम था, क्योंकि नरेन आज के समय में पढ़ाई ही तो वो हथियार है जो आगे चलकर जीवन में हर लड़ाई जीतने में मदद करता है।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा अंजलि। दोस्तों अंजलि ने अपनी बाकी जरूरतों को कम करके भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन जब हमने अपने पहाड़ी दोस्तों से यही सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं वॉक्स पॉप में।
अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती तो क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाते?
हाँ पढ़ाते, मेहनत मजदूरी करके चाहे कैसे भी पढ़ाते, पर पढ़ाते जरूर।
जरूर पढ़ाएंगे, जो कुछ भी करेंगे हम, मेहनत करे मजदूरी करे, हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे।
जी हाँ पढ़ाता, खेती कृषि करके मजदूरी करके और किसी भी कठिनाई का सामना करके बच्चों को तो पढ़ाना अनिवार्य है,
क्योंकि विद्या ही एक सबसे बड़ा आज का साधन है। तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाती, चाहे मैं मजदूरी करती, ग्रामीण रोजगार प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत कई योजनाएं हैं उसमें कार्य करती, तब भी मैं अपने बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए बहुत अधिक कोशिश करती हूँ, मेरा बच्चा जो है कामयाब हो आगे चल के।
सर मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो सबसे पहले मैं उसको देखूंगा कि वो उसके पढ़ाई की ओर रुझान कैसा है, पढ़ाई की ओर ध्यान कैसा है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो मैं किसी भी तरीके से उसको पढ़ाने की पूरी तरह कोशिश करूँगा, या तो अपने रिश्तेदारों से पैसे किसी भी तरीके से लूँगा या बैंक लोन लूँगा, किसी भी तरीके से उसको मैं पढ़ाई के लिए उसके लिए पैसों की व्यवस्था कराऊँगा, उसको पढ़ाऊँगा।
अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर तब भी हम अपने बच्चों को पढ़ा, चाहे हम मेहनत मजदूरी करते तब भी अपने बच्चों को पढ़ा, क्योंकि पढ़ने से वो उनका भविष्य में सुधार आता और कामयाब होते।
और हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में हम और आप सुनेंगे विकला देवी और शंकर सिंह की कहानी, जो अपनी गरीबी को अपने बच्चों की पढ़ाई का दुश्मन नहीं बनने दे रहे हैं।
हालात बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी है और उनके बच्चों की भी दाद देनी चाहिए जो छुट्टियों में होटल में काम करते हैं और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। तो आइए सुनते हैं इस परिवार की कहानी।
मेरा नाम विकला देवी छ, मेरा गाँव नाम कोटियार छ। मानसिक आए के दो तीन महीना जान होटल में आता आप किताबों को उठाऊ दो दुई तीन महीना बाद क्यों नहीं लगा बच्चों तो आदि मेरे विकलांग छ बचपन बेटे और बीमारी रहा पेंशन लगी तो पेंशन 1.5 साल होगी पेंशन आई नहीं है।
आपन अपने बच्चों तक कै तरह से पढ़ाई?
मैं मिन्त मजूरी करी तब मैंने अपने बच्चों पढ़ाई, तब भैंस बांध तब अपने बच्चों दूध मोल लगा नो तबड़े बच्चों से पालो दूध मोल लगे खाते ना तबड़े बच्चों से पालो रहे कि कन पर किताब लोन पढ़ देने ड्रेस लोन पढ़ दी कई चीज लोन पढ़ दी होंगी नहीं तो कखन कन में बच्चों ये कार्य पर जब मिन्त मजूरी वही पढ़ाई लिखाई पैसा वही नहीं तो कखन पढ़ो था मैंने बच्चा, तब जब मिन्त मजू कर दें तब अपने बच्चों पढ़ाए तब अब जब नीप पुगी तब वही पर होटल में लगी थी थोड़ा बहुत।
मेरे नाम शंकर सिंह है, मेरा ग्राम साहब कोटीगार है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में तो बहुत दिक्कतें हैं, घर में बीमार हूँ, घर वाली मेरी मजदूरी मिन्त करती है तब जाके हमारा घर का खर्चा चलता है। थोड़ा आजकल बच्चे जो है मेरे होटल में काम करने जा रखा है, थोड़ा बहुत अपनी किताबों के लिए पैसा लाएगा, उसके बाद जो है आएगा स्कूल को लेंगे, फिर स्कूल में अपनी ड्रेस ड्रेस के लिए फिर स्कूल जाएगा, तब तो अपना खर्चा का चलाने वैसे वो करते हैं, रहते वैसे कभी भूखे रह जाते हैं, कभी प्यास रह जाते हैं, कभी अपने चूल्हे बेचते हैं बच्चे हो गए, कभी इधर उधर वो करते हैं।
आप विकला देवी और शंकर सिंह का पड़ोसी छन, आप उनका बारे में क्या जर्दन?
वो जब मेहनत मजदूरी कर दी तब अपना बच्चों से खाण लो नहीं, कपड़ा लोग दी देना, कभी दीदी लोग दी देने, कभी कोई लोग दी देना गाँव बड़ा का, तब बच्चों से कपड़ा कपड़ा भी होता नहीं, तब बहुत परेशान जब मजदूरी नहीं मिलती तो वह कना कर अपना परिवार से पाल दी होली। वो बहुत मेहनत कर दी, सुबह एयरबिटिन से शाम तक लगी रही, अपना काम भी कर दी, लुकारी गेल भी जानी, मेहनत मजदूरी कर दी, जब मेहनत मजदूरी नहीं रही तब बहुत मुश्किल हो जानी मैं, जब काम रहा तब काम मिल जा, जब काम नहीं रहा तो कहाँ कन्वीन हुआ अपने बच्चों को या अपनी खाता कुछ भी।
हो सुप्रभात को सूर्य जाग, गौ गंगा की धरती जाग, धर्म्यालो आकाश जाग, उदंकारी काठों जाग, सतलोक जाग, पितृलोक जाग, गौरी का गणेश जाग, मोरी का नारायण जाग, भूमि का भूम्याल जाग, काशी को ताल जाग, ब्रह्म लोक जाग ब्रह्मा का वेद जाग दिवा बाती की जोत जा। अखंड दिवा की जोत जाग जीव जाग जीवन जाग पानी का पैडालों जाग ह्यू का हिमालों जाग ऊंचा थोला गड़मा जा। योग माया योग विद्या योग विद्यांगनी माता राजराजेश्वरी नंदा देवी चंद्रवदनी चंद्रघंटिका सुरकंडा सुरी ज्वालपा माई जय माँ गूंगी जागी जा। महाकाली महागौरी महासरस्वती महालक्ष्मी भगवती नवदुर्गा नारायणी जागी जा। भगवती तेरी जय दैत्य दल नाशनी भगवती तेरी जय
दैत्य दल नाशनी भगवती तेरी जय दैत्य दल नाशनी भगवती तेरी जय दैत्य दल नाशनी भगवती तेरी जय।
नरेन मुझे जरा 500 रुपए उधार देना, मैं तुम्हें एक दो हफ्ते में लौटा दूंगी।
नहीं अंजलि, पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
मतलब तुम मना कर रहे हो नरेन?
हाँ बिल्कुल भाई, मैंने अक्सर दुकानों पर लिखा हुआ पढ़ा है कि उधार प्रेम की कैंची है, और अगर हमारी दोस्ती पर इस उधार की कैंची चल गई ना तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
भाई वाह, मान गए नरेन, तुमने कितने प्यार से मुझे पैसे देने से मना कर दिया।
नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें?
नरेन मैं भी मजाक ही कर रही थी समझे, पर देखो ना हमारे धारावाहिक शहर की ओर में चंदर कैसे लोगों को उधार दिए जा रहा है। उसे मालूम है कि ऐसा करने से उसकी दुकान घाटे में जा सकती है, फिर भी।
दरअसल वो मेरी तरह समझदार नहीं है, उसे प्यार से लोगों को मना करना ही नहीं आता।
तो नरेन उधार देने से कैसे बचे, खास तौर पर तब जब सामने वाला जान पहचान का ही हो।
भाई अंजलि, मैं तो तुम्हें उधार देने से बच गया, लेकिन बाकी लोग ऐसी परिस्थिति में क्या करें, इस बारे में तो हमें भैजी ही बता सकते हैं।
तो आइए बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी।
हाँ कैसे हो आप दोनों?
भैजी हम दोनों तो ठीक हैं, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं।
ओफो क्या हुआ भाई लोगों को?
भैजी हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस वो तो उधार दे देकर परेशान है। उसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो उधार मांगने वाले जान पहचान के ही लोग होते हैं, अब मना करें तो कैसे करें।
कह तो तुम ठीक रहे हो, बड़ी अजीब स्थिति बन जाती है उस वक्त जब कोई अपना ही जानकार आपसे उधार मांगने लगता है, खास तौर से उस वक्त जब आप भी उतने सक्षम नहीं होते कि आप उसे उधार दे सकें। अब उधार दो तो मरो, उधार ना दो तो मरो।
भैजी मैं तो अंजलि को कह ही रहा था कि उधार ना ही दो तो अच्छा।
मगर मना किया जाए तो कैसे किया जाए, यही तो सवाल है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उधार मांगने वाला आपका रिश्तेदार है। शहर की बात अलग है, वहाँ उधार में व्यवसाय न करना दुकानदारों के लिए आसान है, लेकिन गांव में
जैसे हमारे धारावाहिक शहर की ओर में चंदर की हालत है।
हाँ, चंदर के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि गांव में आपको सब लोग जानते हैं, बहुत से ग्राहक आपके अपने रिश्ते वाले होते हैं।
तो फिर क्या करना चाहिए?
अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से ही दुकान के सामने बोर्ड लगा लेते हैं, तख्ती, उधार मांगने पर यहाँ सामान नहीं दिया जाता, तो कोई उधार के लिए पूछेगा ही नहीं। ये एक उपाय हो सकता है।
हाँ ये तो मैंने किराने की दुकानों के बाहर देखा है।
साथ में आप अपना मुनाफा अगर आसपास के दुकानदारों से कम रखें तो ग्राहक आपके बोर्ड को देखकर भी आपके पास आएंगे। और मान लीजिए कि अगर आपका व्यापार ऐसी जगह पर है जहां ग्राहक मिलना मुश्किल है तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी होगी, ये तो बिजनेस का उसूल है। और समझदारी इसी में है कि रिश्तेदारी और अपने व्यापार को अलग अलग रखें। और अगर जान पहचान में उधार देना ही है तो आप पहले से तय कर लें कि उधार कितने तक देंगे। पहले से ही आप ग्राहकों को बताएं कि भाई 100 रुपए से ज्यादा उधार नहीं चलेगा, तो ऐसे में आगे जाकर आपके ग्राहकों से आपके रिश्ते बने रहेंगे।
बिल्कुल भैजी,
और हाँ, उधार किसको दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं और कब, ये सब बातें लिख कर रखना ना भूलें। जिनको आप उधार दे रहे हैं उनके पास भी ये जानकारी लिखित में होनी ही चाहिए। कल को नहीं तो वो बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई उधार ही नहीं लिया आपसे। और हाँ, ये भी जरूरी है कि आप जिनको उधार दे रहे हैं उनके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जानते ही हैं कि उधार चुकता वो नहीं कर सकता तो कोई अच्छा सा बहाना बनाकर उसे टाल दीजिए।
लेकिन भैजी, यही तो एक बड़ी समस्या है कि मना कैसे करें।
ओफो अंजलि, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप प्यार से कह दीजिए, मैं अभी आपकी मदद करने में सक्षम नहीं हूँ भाई साहब, या फिर मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर भविष्य में मुझसे कुछ बन पड़ेगा तो जरूर मदद करूंगा। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन ये बात मैं 100% कह सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इससे आपके संबंध उतने नहीं बिगड़ेंगे जितने कि अक्सर लोगों द्वारा उधार न चुकाने पर आपस में बिगड़ जाते हैं।
बिल्कुल भैजी, मेरी समझ में तो बात आ गई। और हाँ अंजलि, मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाला।
कोई बात नहीं, मैं भैजी से ले लूंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है भैजी की बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात की बुराई मोल लेने से अच्छा है कि आप पहले ही अपने जान पहचान वालों को प्यार से मना कर दीजिए।
अगर आप उधार देने में सक्षम नहीं हैं तो
और अब बात शिक्षा की। पिछले एपिसोड में हमने लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बात की थी
और आपको जानकारी दी थी सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी बेटियों को आसानी से स्कूल भेज सकते हैं।
आज हम आपको बताते हैं उन योजनाओं के बारे में जो दिल्ली में रह रहे हमारे प्रवासी दोस्तों के काम आ सकती हैं।
दोस्तों, दिल्ली सरकार ने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसी योजना चला रखी है जिसके अंतर्गत प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उन पर खर्च की जाने वाली ट्यूशन फीस वापस मिल जाती है। ये योजना लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, लेकिन जरूरी है कि उनका नाम SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कोटे में दर्ज हो।
इस योजना के अंतर्गत पहली से पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी स्कूल की ट्यूशन फीस वापस प्राप्त हो जाती है और बाकी जरूरी फीस का भी कुछ हिस्सा प्राप्त हो जाता है।
और छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 50% नंबर लाना अनिवार्य है।
और हाँ, स्कूल में उनकी अटेंडेंस एक साल में 80% से कम नहीं होनी चाहिए।
इस योजना में जिन परिवारों की वार्षिक आय 48,000 रुपए से नीचे है उन्हें 100% ट्यूशन फीस और जिनकी आय 48,000 से 1,00,000 रुपए तक है उन्हें 75% तक ट्यूशन फीस वापस हो जाती है।
इसके फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, सेकेंड फ्लोर, बी ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली 110002 से। आप चाहें तो वहां फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 0112337-9514। इसके अलावा आप फॉर्म दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.scstwelfare.delhi.gov.nic.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे ये फॉर्म आपको उस प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल से भी मिल जाएगा जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है।
और अगर आप इन योजनाओं से जुड़ी कोई और जानकारी हमसे चाहते हैं तो आप हमें 9197176782 पर SMS कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अपनी जरूरत की पूरी जानकारी मिले।
तो ये थी आज की काम की बात।
और अब बात आज की चिट्ठी की।
और अब वक्त हो चला है उस विजेता के बारे में जानने का जिनकी चिट्ठी को चुना गया है हमारे आज के सेगमेंट आपकी चिट्ठी में। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहूंगी कि हमें हमारे और किन किन श्रोताओं की चिट्ठियां हमारे इस सेगमेंट के लिए मिली हैं। हमें चिट्ठी लिखी है अनूप नैनवाल मनोज जी ने ठाणे से, संगीता बालोदी ने मुंबई से और चिंतामणि तिवारी जी ने मुंबई से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो हमारे श्रोता जो विजेता हैं आज के हमारे इस सेगमेंट के, वो हैं श्री ललित सिंह बिष्ट नायगांव भयंदर से। ये लिखते हैं, मैं ललित सिंह बिष्ट पहाड़ों से शहर की ओर रोजगार के लिए निकला था। बस की सब सीटें भरी हुई थी। बस में बहुत परेशानी हुई। दिल्ली रेलवे स्टेशन में जनरल डिब्बे का टिकट लिया। डिब्बे में बहुत भीड़ थी। मेरा टिकट कहीं गिर गया। 5-6 स्टेशन के बाद TC डिब्बे में आया। मेरे पास टिकट न होने पर TC ने बहुत तकलीफ दी। मुझे डिब्बे से स्टेशन पर उतारा, फिर 3-4 घंटे स्टेशन पर रखा। उसके बाद TC ने जुर्माने की बात कही। उसके बाद 600 रुपया जुर्माना भरा। मुझे स्टेशन पर बहुत तकलीफ हुई। टीसी ने फिर रसीद दी, उसकी वजह से मैं मुंबई तक पहुंचा। फिर उसके बाद लोकल ट्रेन से अपनी दीदी के घर पहुंचा। वहां पर भाषा की बहुत तकलीफ हुई क्योंकि वहां पर सब मराठी बोलते थे। उसके बाद मैं रोजगार के लिए इधर उधर भटका। कई पहाड़ी लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे रोजगार दिलाया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी श्री ललित सिंह बिष्ट जी, और साथ ही ढेर सारी मुबारकबाद क्योंकि हमारे सेगमेंट आपकी चिट्ठी के लिए आप हैं आज के विजेता, और इनाम के तौर पर आपको दिया जा रहा है एक ट्रैवल बैग।
दोस्तों आप भी जीत सकते हैं जब चलें शहर की ओर की तरफ से एक ट्रैवल बैग, तो इसके लिए हमें भेजते रहिए अपनी चिट्ठियाँ। और अब समय है संदेशों को सुनने का,
तो आइए सुनते हैं आज हमारे दोस्तों ने अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को या फिर दोस्तों को क्या क्या संदेश भेजे हैं।
मैं कल्याण महाराष्ट्र से सरोजनी कोड़िया बनू छो, और मेरे माँ पिता देहरादून में रहना, तो तबियत ये ठीक नहीं थी माँ की, कनकन होली तन फोन करे बनो, और जमुना कागज तन फोन करा, और सब बच्चा कनकन जाना तन फोन करा, राज खुश दिया अपनी, और यहाँ भी ठीक जाना या बरखा होनी च, और जन्माई तबियत रहा तन फोन करा, और डॉक्टर में जान दे रहा, और यहाँ भी ठीक जान बिना भी 21 तारीख जान वाल च।
मैं बम्बई से बोल रहा हूँ, मेरा गांव का नाम रियाड, जिला नैनीताल, पोस्ट ऑफिस हनाना, और मैं बम्बई से शिव सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ, और इधर मैं अपना जीजा के साथ आया संजय सिंह पटवाल जी के साथ। मैं बहुत ठीक, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ, और घर में सबको, गाँव वालों को सबको नमस्कार।
मैं नीलम दिल्ली महिलका से ग्राम ढोंड जिला पौड़ी में मम्मी पापा को नमस्ते। मम्मी मैं ठीक हूँ, आप भी वहाँ पर राजी खुशी होंगे। मम्मी ज़्यादा काम मत करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, और चाचा चाची को मेरा नमस्ते कहना।
मैं मुंबई बेटे रेखा जोश चौवन हूँ। मैं अपने माँ का एक मैं संदेश देना चाहन छूँ। मेरी माँ को बोले आना एक बारिश वगैरह बहुत छो आनी, और माँ मुझे नौ दया ब्यो छो, मैं नहीं सकदू, बच्चे लोगों स्कूल भी चालू है ना, और माँ मुझे लोग बोल के नाराज नहीं वान, माफी चाहनो आप लोग से, आप लोगों ने कार्ड वीड भेजी पहुँच गई, और पिताजी ख्याल रखे, आजकल बारिश वगैरह ज़्यादा हो गए, ज़्यादा काम धंधा पर ज़्यादा यूँ नहीं करे, अंजोर नहीं ध्यान, पिताजी पैरों भी ख्याल रखे, पिताजी पैर पर दर्द बहुत होंदो, और मैं चिंता नहीं करे, मेरे बच्चा लोग सब ठीक छा या मुंबई में।
तो दोस्तों उम्मीद है आपके संदेश आपके अपनों तक जरूर पहुंच गए होंगे,
और अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार तक या शहर में काम कर रहे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, उसके मैसेज बॉक्स में जाइए, अपना संदेश अपने नाम और पते के साथ हमारे नंबर पर तुरंत SMS कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782।
तो दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, और अब वक्त का तकाजा है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन दोस्तों आप हमें चिट्ठी लिखना बिल्कुल ना भूलें, खासकर अपने खुशी या दुख भरे प्रवास से जुड़े अनुभव के साथ।
इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सहयोगियों हेवलवाणी, मंदाकिनी की आवाज़, और दिल्ली और मुंबई के हमारे सभी सामुदायिक संवाददाताओं का।
और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
साथ ही हम अपने प्रवासी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आप मिलजुल कर अपना क्लब तैयार कीजिए, ताकि आप अपने जैसे प्रवासियों की मदद कर सकें। साथ ही आप अपने मनोरंजन और जानकारी के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित कर सकते हैं। अगर आप शहरों में ऐसे ही क्लब चला रहे हैं, तो अपने क्लब की गतिविधियों के बारे में हमें चिट्ठी द्वारा जरूर बताइए, ताकि हम कार्यक्रम के अगले एपिसोड में इसकी जानकारी और प्रवासियों तक पहुंचा सकें, और वो भी आपकी गतिविधियों का लाभ उठा सकें।
हमारा पता है
कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोक एनक्लेव, पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो इसी के साथ इजाजत दीजिए,
नमस्कार।
जब चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।